ओम शांति। आज का विषय बहुत सुंदर विषय है, बेहद की वैराग वृत्ति। लोगों को वैराग कब आता है? जब दुखी हो जाते हैं, झगड़ा हो जाता है, होता है ना, घर छोड़ के भाग जाते हैं, दुखी होकर, डिस्टर्ब होकर, परेशान होकर। लेकिन उसको वैराग वृत्ति नहीं कहा जाता। मीठे बाबा ने सबके बीच रहते हुए, सबसे प्रेम निभाते हुए, जिम्मेवारियां निभाते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सबसे न्यारा और उसके बाद क्या कहेंगे, सबका प्यारा। सबसे न्यारा और सबका प्यारा, इसको कहते हैं बेहद की वैराग वृत्ति। सबके बीच हैं लेकिन आत्मिक संबंध याद है, दैहिक संबंध नहीं। एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देख रहे हैं, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना है, लेकिन लगाव नहीं, झुकाव नहीं। शुभ भावना, शुभ कामना से भरपूर है। दुनिया में जो मनुष्य हैं, या तो बहुत अति प्रेम में जले जाएंगे, लगाव में, या एकदम किनारा कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे। बाबा ने क्या सिखाया, प्रेम भी सदा बना रहे और न्यारापन भी सदा रहे। याद रहे हम आए हैं पार्ट बजाने, ये सृष्टि ड्रामा की स्टेज है, हम पार्टधारी हैं, हम पार्ट बजाने आए हैं। ये जितने रिश्ते हैं ये सब पार्ट हैं, हर एक को अलग अलग पार्ट मिला हुआ है। इस ड्रामा की स्टेज पर हम पार्टधारी हैं, ये याद रखते हुए कर्म करते चलें, ताकि हमारा कर्म भी एक्यूरेट हो, श्रेष्ठ हो, महान कर्म हो, सबको सहयोग देने वाला हो, सबकी मदद करने वाला हो और न्यारा भी हो, किसी से लगाव नहीं। अगर है तो हर एक के लिए शुभ भावना है, इनका भी कल्याण हो, इनकी भी उन्नति हो, इनको भी बाबा से मिला दें, ये आत्म दर्शन करें, परमात्म दर्शन करें और जीवन में सदा सुख की अनुभूति करें। आज लोग सदा सुख की अनुभूति नहीं करते, सुबह से रात्रि तक कितने मूड बदलते रहते हैं, कभी खुश हैं, कभी नाराज हैं, कभी उदास हैं, रूप बदलता रहता है। लेकिन बाबा ने क्या सिखाया, क्या वरदान दिया, सदा एक रस, खुशनुमा, क्योंकि बाबा ने कहा है अगर आप खुश होंगे, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, तब दूसरे को खुशी मिलेगी। अगर आपके पास ही नहीं है तो दूसरे को कैसे मिलेगी? इसलिए दूसरे को देने की कोशिश न करो, अपने को भरपूर रखने की कोशिश करो। आप भरपूर होंगे, औरों को अपने आप मिलता जाएगा, अपने आप मिलता जाएगा। लाइट जल रही है तो सबको अपने आप रोशनी मिल रही है। इसी तरह से हमारी स्थिति श्रेष्ठ होगी तो अपने आप औरों को शक्ति मिलती रहेगी, रोशनी मिलती रहेगी, वो पावर मिलती रहेगी। ऐसा सुंदर तरीके से इस सृष्टि रूपी ड्रामा में बाबा ने पार्ट बजाना सिखा दिया। ऐसे श्रेष्ठ तरीके से पार्ट बजाओ। पार्टधारी भी हैं, न्यारे और प्यारे भी हैं, सदा खुश हैं, सदा साक्षी दृष्टा हैं, साक्षी दृष्टा रहकर सारे खेल को देख रहे हैं। कि हर आत्मा का अलग अलग पार्ट है, किसी के भी पार्ट को देखकर हम डिस्टर्ब नहीं होते। हम याद करते हैं इसका कोई दोष नहीं है, इसने हर कल्प यही पार्ट बजाया है। लेकिन अभी सबकी उन्नति हो, अभी चढ़ती कला हो, अभी सदा अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहें, ये शुभ भावना मन में सदा रहे। बाबा ने दुखी होने से, रोने से, डिस्टर्ब होने से, परेशान होने से छुड़ा दिया। लोग तो सुबह से रात्रि तक कितनी बार मूड बदलते हैं। बाबा ने वरदान दिया, उस वरदान के आगे कौन सा शब्द है? सदा। सदा सुखी, सदा प्रसन्न चित, सदा दाता, भाग्य विधाता बनकर पाठ बजाओ। एवर हैप्पी, एवर का वरदान दिया, सदा का वरदान दिया। हमें नशा है इस चीज का। हम जब बाबा के पास आए, मेरी उम्र 6 वर्ष की थी, जो क्लास करना शुरू किया, पहले दिन से इतना नशा चढ़ा। एक दादी थी, वो मैं 6 वर्ष की थी, मुझे अलग क्लास कराती थी, याद करा दिया मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। इतना बार बार रिपीट करा के पक्का करा दिया। फिर उन्होंने कहा सुबह से रात्रि तक यही मन में रिपीट करती रहो, यही मन में रिपीट करती रहो। आप सब यहाँ आए हैं ना, यही मन में रिपीट करो। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। यही बाबा ने मंत्र दिया है, ये हमारा असली गुण है। इसको जितना याद करेंगे, ये हमारे एक्शन में आ जाएगा, हमारे कर्मों में आ जाएगा। तब हमारे कर्मों में आएगा तो औरों को हमसे शांति मिलेगी, औरों को हमसे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, हमारी बातों से आनंद आएगा, ईश्वरी प्रेम की अनुभूति होगी, हर बात में ज्ञान भरा हुआ होगा, हर कर्म में ज्ञान भरा हुआ होगा, औरों को दिखाई देगा ये ज्ञानी तो आत्मा है, इनके हर कर्म में ज्ञान भरा हुआ है, बहुत अनुभूति है। इस प्रकार से मीठे बाबा ने हम सभी बच्चों को बहुत अनमोल बना दिया, हीरे तुल्य बना दिया, दाता बनाया, भाग्य विधाता बनाया, वर दाता बनाया। दाता हैं, देने वाले हैं, लेकिन कहीं भी आसक्त नहीं है, कहीं भी आसक्ति नहीं, कहीं मोह नहीं, ऐसा मीठा पार्ट। दुख उसको होता है जिसको मोह होता है, उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो आंख से आंसू बहाता है, मोह में कुछ स्वार्थ भी होता है, वो पूरा नहीं होता है तो दुखी होता है। बाबा ने कहा है प्रेम स्वरूप बन के रहो। कैसा प्रेम? औरों को सुख देने वाला, औरों को आनंद देने वाला, औरों को शक्ति देने वाला, ऐसा प्रेम, मांगने वाला नहीं। इसको हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार करना चाहिए, मांगने वाला नहीं, लेकिन मुझे कितना अच्छा करना चाहिए, हम करते चले, करते चले, करते चले। दाता बनकर, भाग्य विधाता बनकर करते चले। इसके लिए आवश्यक है बेहद की वैराग वृत्ति। राग और वैराग, राग माना लगाव, वैराग माना न्यारापन। बाबा कहते हैं राग से परे रहो, वैराग वृत्ति रहे। वैराग वृत्ति का अर्थ ही है मैं इस ड्रामा में एक एक्टर हूँ, पार्टधारी हूँ, औरों को भी पार्टधारी देखें। ऐसी वैराग वृत्ति वाली आत्मा कभी भी दुखी नहीं होगी, कभी भी अशांत नहीं होगी, कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगी। दुखी अशांत वो होता है जिसे किसी से उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, मैंने इनके साथ इतना अच्छा किया, ये भी मेरे साथ इतना अच्छा करेंगे, मैंने इनको इतना दिया, ये भी मुझे इतना करेंगे, अपने अच्छे किए हुए का रिटर्न लेने की भावना जिसके अंदर है वो कदम कदम पे दुखी होता रहेगा। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे दाता बन जाओ, देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। देवताओं के चित्र में हमेशा या तो हाथ वरदानी ऐसे है या ऐसे है ना या ऐसे दे रहे हैं या ऐसे दे रहे हैं, दोनों हाथ देने वाले हैं, लेने वाला नहीं है, इसलिए देवता कहलाए। दाता बने तब देवता कहलाना शुरू हुआ, तो देवता तब कहलाएंगे जब दाता बन जाएंगे। कहाँ दाता बनेंगे? यहाँ, यहाँ सबको जरूरत है शांति की, शक्ति की, सुख की, यहाँ जरूरत है। बाबा ने कहा तुमको देने की भी कोशिश नहीं करो, अपने को भरपूर कर लो, शांत स्वरूप बन जाओ, सुख स्वरूप बन जाओ, आनंद स्वरूप बन जाओ, प्रेम स्वरूप बन जाओ, औरों को अपने आप मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। जब खुद आनंद स्वरूप होंगे तो दूसरों से लेने की इच्छा नहीं होगी, लेकिन औरों को अपने आप मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, जिससे हमेशा शांति मिलती रहे, शक्ति मिलती रहे, जिसके समीप आकर, जैसे बाबा के समीप आकर, बड़ी बड़ी दादियों के समीप आकर, उनकी दृष्टि पड़ते ही शांति मिलती है, शक्ति मिलती है, आनंद आता है, ईश्वरी प्रेम की अनुभूति होती है, केवल उनकी दृष्टि से। ऐसे अगर हम बन जाएंगे तो हमारी दृष्टि से औरों को सुख मिलेगा। कहेंगे इनकी दृष्टि में बहुत शक्ति है। फिर बाबा ने कहा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हमारे चारों तरफ का वातावरण इतना श्रेष्ठ हो जाएगा। वैसी दृष्टि तब बनेगी जब हमारी देहद की वैराग वृत्ति होगी। ये सारी दुनिया में है लेकिन किसी से भी हमारा लगाव नहीं है, प्यार सबसे है, सहयोग सबको देने की भावना है, मदद करने की भावना है। बाबा से इनको मिला दें, इनको बाबा का बना दें, ऐसी सेवा करने की भावना है। हर एक आत्मा के शुभ चिंतक हैं, लेकिन बदला नहीं चाहते कि मेरे भी ये शुभ चिंतक रहें। वो अपने आप होगा, उसके लिए कहना नहीं पड़ेगा। बाबा ने हमारी दृष्टि में वो शक्ति भर दी है, क्योंकि हम हर एक को आत्मा देखते हैं। ये भी बाबा के अनमोल रत्न हैं, ये भी बाबा के नूरे रत्न हैं। उस दृष्टि से हर एक को देखते हैं, हर एक को ऊंची नजर से देखते हैं, तो उन्हों को शक्ति मिलती है, पावर मिलती है, और वो शक्ति हमारी दृष्टि में भी आ जाती है। जो नए लोग, जो ज्ञान में नहीं चलने वाले हैं, उनको भी दृष्टि से पावर मिलती है, शांति मिलती है, उन्हों को भी शक्ति मिलती है। कहते हैं आपके नजदीक आने से हमको शांति मिलती है, शक्ति मिलती है। दो शब्द हैं, ज्ञान और वैराग। जब सारी पुरानी दुनिया से वैराग आ जाता है तो ज्ञान की मूरत बन जाते हैं। वैराग आने से ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं। ज्ञान से वैराग, परिस्थितियों के कारण वैराग नहीं, समस्याओं के कारण वैराग नहीं, ज्ञान से वैराग, और वैराग से ज्ञान की उत्पत्ति। कहते ज्ञान हो गया, ज्ञान सुना हुआ था लेकिन आज ज्ञान हो गया, अनुभव में आ गया। तो वैराग और ज्ञान का आपस में संबंध है। जो ज्ञान हमने सुना है वो हमारे अनुभव में तब आता है जब वैराग वृत्ति जागृत होती है। सबके बीच रहते हम सदा सुखी हैं, सबके बीच रहते किसी की कोई शिकायत हमको नहीं है। पता है ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, एक जैसे दो व्यक्ति नहीं हो सकते। हरेक का संस्कार अलग अलग है, हरेक का पार्ट अलग अलग है। हम साक्षी दृष्टा होकर दृश्य को देखने वाले हैं, दृश्य का आनंद लेने वाले हैं। बाबा ने हमको ऐसा साक्षी दृष्टा बनाया है। इस दुनिया सृष्टि में पार्ट बजाओ, साक्षी दृष्टा होकर के देखो, हरेक को आत्मा की नजर से देखो, हरेक को पार्टधारी की नजर से देखो। और हमारा पार्ट क्या है? सबको सुख देने का पार्ट है, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखने का पार्ट है। दुनिया में किसी के पास भी लक्ष्य नहीं है, बनना क्या है किसी से पूछो। बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है, तुम नर हो, तुम्हें नारायण जैसा बनना है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, तुमको बनना है तो मन में सर्व गुणों की लिस्ट बनी रहे और देखें सर्व गुण है मेरे में। क्योंकि मन का काम है चिंतन करना, एक सेकंड भी मन रुकता नहीं है। तो मन को कभी काम दे दो, चलो गुणों की लिस्ट बनाओ। तो गुणों की लिस्ट बन जाए, प्राप्तियों की लिस्ट बनाओ, बाबा से क्या क्या पाया वो लिस्ट बनती रहे। अंदर से एक ही आवाज है, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। अब जो पाया है वो औरों को मिले, यही हमारा लक्ष्य है। हमारे द्वारा अनेक आत्माओं को प्राप्तियां हो, यही हमारा लक्ष्य है। तो जब हमारी सेवा की भावना है, अनेक आत्माओं को सुख देने की भावना है, अनेक आत्माओं को बाबा का बनाने की भावना है। कई हैं योग में बैठते हैं, योग नहीं लगता है, मन बुद्धि एकाग्र नहीं होता है, हमने दादियों के अनुभव सुने हैं। योग में वो लगन में मगन है, योग में योग लगाने का पुरुषार्थ नहीं कर रही है। दादियों से पूछा योग कैसे लगाते हो, कहा हमारा एक घंटे का योग थोड़े ही है, हमारा योगी जीवन है, हम योगी जीवन वाले हैं। हर समय बाबा दिखाई दे, हर समय बाबा के गुण याद आते रहें। जो बाबा के गुण है वही गुण मेरे भी हो, ये शुभ भावना अपने लिए भी जगाते रहें। हमने देखा है बड़ी बड़ी दादियों के साथ रहे, कभी उनका मूड नहीं बदलता है, कभी किसी से झगड़ा नहीं होता है, कभी किसी से रूठते नहीं हैं, कभी नाराज नहीं होते हैं। सदा देवता देने वाले, हर एक को ऐसा दृष्टि देते हैं उनसे वो कितने संतुष्ट हैं, कितने खुश हैं। हरेक को देखते हुए उनके चेहरे पर जो खुशी आती है वो सुख देने वाली है। ऐसा हमारा भी हो। सतयुग में जाके सुख नहीं देना है, यहां सुख देना है, यहां सहयोग देना है, यहां शांति देनी है। अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, सदा आत्मा के गुणों को याद करते रहें, बाबा के गुणों का चिंतन करते रहें। बाबा कहता है बाप समान बनो, बाबा के गुण बच्चों में होने चाहिए, तब औरों की सेवा होगी। क्योंकि सभी बच्चों को बाबा ने कहा मेरी भुजाएं हैं, इनके द्वारा मैं अनेक आत्माओं का कल्याण कर रहा हूं, तो बाबा के गुण दिखाई दें। हमेशा मन के अंदर खुशी जागृत होती रहे, हमेशा हर एक को दिखाई दे ये सारा दिन खुश है, सदा प्रसन्न चित्त है, ये सदा संतुष्ट है, ये सदा खुशनुमा है। पूछते हैं क्या मिला है आपको जो आप इतने खुश रहते हैं, क्योंकि बिना प्राप्ति के खुशी नहीं होती। तो हम एक एक चीज की लिस्ट नहीं बताते हैं, हमको स्वयं भगवान मिला है, उसने सब कुछ दिया है हमको, सोचना भी सिखाया है, बोलना भी सिखाया है, व्यवहार करना भी सिखाया है। कैसे न्यारे और प्यारे रहो ये भी सिखाया है। दृष्टि वृत्ति कितनी ऊंची रहे, इसलिए बाबा की नजर निहाल कर देती, बाबा की नजर माला माल कर देती। दृष्टि मिलते ही आत्मा शक्तियों से भरपूर हो जाती है। ऐसे अपने आप को इतना शक्तियों से भरपूर कर लेना है कि हमारी दृष्टि से औरों को मिलता रहे। हमारे अंदर शक्तियों का भंडार है, औरों को अपने आप मिलता रहेगा, हमको देना नहीं पड़ेगा। लोगों को आश्चर्य होता है सदा खुश कैसे रहते हैं, इतने लोगों के बीच रहते संतुष्ट कैसे रहते हैं। घर में चार लोग होते हैं तो झगड़ा हो जाता है, आप कैसे इतने प्रसन्न चित रहते हैं, कैसे हरे के गुण गाते रहते हैं। किसने सिखाया? बाबा ने सिखाया। बहुतों के बीच रहकर भी हम खुश रहते हैं और औरों को भी खुशी देने की लक्ष्य रखते हैं। हरे को खुशी मिलती रहे, खुशी देने से उनको नहीं मिलेगी, हम खुश होंगे तो उनको अपने आप मिल जाएगी। जो चीज हमारे पास है वो दूसरे को अपने आप मिल जाएगी। जैसे दुखी को देखकर मन दुखी हो जाता है, ऐसे हमारी अपरम अपार खुशी, जिसको बाबा ने कहा है अति इंद्रिय सुख, जो सुख इंद्रियों से नहीं मिलता है, आत्मा को डायरेक्ट परमात्मा से मिलता है, उसे कहते हैं अति इंद्रिय सुख। हमारे चेहरे से वो सुख अनुभव हो, वो सुख हमको अपने आसपास रहने वालों ने दिया है? नहीं, स्वयं भगवान ने दिया है। सर्वशक्तियां उन्होंने दी है, भंडार उन्होंने भरा है। कोई भी कार्य करते हैं कभी कमी पड़ती नहीं है, कहीं मांगने भी नहीं जाते हैं। ये कार्य किसका है? भगवान का कार्य है, वो स्वयं करते हैं, स्वयं कराते हैं। कोई कार्य करने से पहले चिंता नहीं होती है, कैसे होगा, क्या करेंगे, कोई चिंता नहीं। कार्य शुरू करते हैं और देखते हैं साक्षी होकर, होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है। वो कमाल का कार्य देखते रहते हैं, कैसे बाबा अपने बच्चों से हर कार्य को संपन्न कराता ही रहता है। व्यर्थ चिंतन से मुक्त बाबा ने बनाया है। क्या होगा, कैसे होगा, कोई प्रश्न नहीं है। मुझे इतना भरपूर रहना है कि औरों को सुख भी मिले, शक्ति भी मिले, हमको देखकर बाबा याद आए, हमारे नैनों में बाबा दिखाई दे, हमको देखने से ही दूसरे का योग लग जाए। बाबा कहते हैं ऐसे योग की अवस्था बनाकर रखो, ऐसे योग युक्त रहो, ऐसे योगी जो होंगे उनकी वैराग वृत्ति होगी। राग माना लगाओ, वैराग माना न्यारे, कोई देहधारी से लगाव नहीं, मेरापन नहीं, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। अब हम केवल एक ही बात जानते हैं, मेरा बाबा, मेरा बाबा। जब मेरा बोलते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, मेरा बाबा। जब मेरा बाबा याद रखते हैं तो सारे कार्य कराने वाला करण करावनहार बाबा है। तो ये शक्ति मिल जाती है, पावर मिल जाती है। देहधारियों को मेरा मेरा कहते हैं, उनसे भी आशा रहती है, इनसे ये मिलना चाहिए, ये सहयोग मिलना चाहिए। बाबा ने एकदम न्यारा बना दिया। इस दुनिया में रहते हुए न्यारा इसलिए प्यारा, अगर न्यारा नहीं होते तो प्यारा नहीं होते। बाबा कहते हैं न्यारापन भी रहे तो प्यारापन भी रहेगा। तो इस ड्रामा में कैसे अच्छा पार्ट बजाओ, साक्षी दृष्टा होकर बेहद की वैराग वृत्ति धारण करके। वैराग वृत्ति से क्या होगा? न्यारापन। और योग से क्या होगा? प्यारापन। न्यारा भी हो, प्यारा भी हो, इस तरह से सदा खुश रहेंगे, सदा उमंग और उत्साह रहेगा। किसी के व्यवहार को देखकर उत्साह घट जाए, क्योंकि हम बाबा को देखकर चल रहे हैं, बाबा से शक्तियां मिल रही हैं, पावर मिल रही है। इस तरह से वो बेहद की वैराग वृत्ति जब धारण करके चलते हैं तो अवस्था एक रस हो जाती है। सदा संतुष्ट भी हैं, सदा खुश भी हैं, सदा खुशियां बांट भी रहे हैं। अपने आप को जितना ज्ञान से भरपूर रखेंगे वो हमारे एक्शन में दिखाई देगा। ज्ञान युक्त कर्म, ज्ञानी तू आत्मा, बाबा कहते हैं मुझे सबसे प्रिय है। बाबा ने बनाया है, ज्ञानी तू आत्मा। ज्ञानी तू आत्मा उसको कहते हैं जिसके हर कर्म ज्ञान युक्त हैं, जिसके हर कर्म श्रेष्ठ हैं, बाबा की याद में है, जिसके कर्म बंधन में बांधते नहीं है, वो आत्मा कर्म बंधन ही नहीं है, बंधन मुक्त, उसको ही न्यारा और प्यारा कहते हैं। हमने देखा बड़ी दादियों को बहुत सबको प्यार बांटती है, बहुत सबको प्यार करती है, बहुत सबको संतुष्ट करती है, लेकिन किसी से अटैचमेंट नहीं है। प्यार है सबसे है, शुभावना है सबसे है, सबके प्रति कल्याणकारी है, ऐसी ऊंची अवस्था इस संगम युग पर बाबा ने बनाई है, बाबा ने दिखाई है। मैं 6 वर्ष की थी जब क्लास करना शुरू किया, जब 12 वर्ष की थी तो सेंटर पर रहने लगे 12 वर्ष की उम्र से स्कूल पढ़ने जाती थी तो सेंटर से ही जाती थी पढ़ने। धीरे धीरे आगे बढ़े, धीरे धीरे बाबा ने आगे बढ़ाया, यहां तक पहुंचा दिया। ऐसा नहीं लगा कोई समस्या आई, कोई विघ्न आया, कोई बाधाएं आई। इतने दिनों में लोग तो अपनी कितनी कहानियां सुनाएंगे हमेशा बाबा ने रखा सदा एवर हैप्पी, सदा निर्विघ्न, सदा बाबा की याद में लगन में मगन, सदा संतुष्ट, किसी से भी कभी नाराजगी हुई नहीं, सदा राजी ये वरदान है बाबा के। बाबा ने ऐसा रखा, पूरा पूरा जीवन वरदान से भर दिया। इस तरह से बाबा ने कदम कदम पर, कदम कदम पर सदा खुशियों से भरपूर रखा। साकार में भी बाबा ने बहुत वरदान दिए। एक दिन की बात सुनाती हूँ, बाबा मुरली चला रहे थे, मैं बिल्कुल बाबा के सामने बैठी थी क्लास में। जब मुरली पूरी हुई, बाबा ने मुझे बुलाया, इधर आओ। फिर बाबा ने मुझे कहा, आज जो मुरली चली है इसको भाषण की तरह लिखो, भाषण की तरह लिखकर 10 बजे बाबा के कमरे में आना। उससे पहले मैंने कभी कुछ लिखा नहीं था। उस टाइम मेरी उम्र भी कितनी थी, 15-16 वर्ष की होगी। मैंने अपना कॉपी पेन लिया, एकांत में जाकर बैठी और मैंने बाबा की जो मुरली चली थी सारा नोट किए थे, उसको भाषण की रूपरेखा बनाते हुए बाबा ने कहा भाषण की तरह लिखना, बनाते हुए मैं लिखकर 10 बजे बाबा के कमरे में पहुंच गई। बाबा ने कहा, बच्ची लिखकर आई है? कहा जी बाबा। सामने बिठाया, कहा पढ़कर सुनाओ। जब मैं पढ़कर सुनाने लगी, 3-4 लाइन पढ़ी, बाबा ने पूछा, किसी से पूछ के लिखा है? मैं कहा नहीं, मैं अकेले बैठ के लिखा है। अच्छा लिखा है, बाबा ने कहा अच्छा लिखा है, वरदान दिया ना। फिर बाबा ने सारा सुना, जितना मैंने लिखा था सारा सुना। फिर बाबा ने कहा इसको यहां रखे जाओ, बाबा पढ़ेंगे। दूसरे दिन फिर मुरली चली, रक्षाबंधन आने वाला था, रक्षाबंधन से संबंधित बहुत बाबा ने युक्तियां विधियां सुनाई थी। दूसरे दिन भी बाबा ने बुलाया, कहा आज जो मुरली चली है इसको भाषण की तरह लिखकर 10 बजे बाबा के कमरे में आना। तो दूसरे दिन भी मैंने सारे भाषण तैयार किया, मैं बाबा के कमरे में पहुंच गई। बाबा ने कहा लिखकर आई है? अगर जी बाबा। तो बाबा ने कहा पढ़कर सुनाओ। मैंने पढ़कर सुनाया, बाबा बीच बीच में अच्छा लिखा है, बाबा वरदान देते रहे। फिर बाबा ने कहा कल और आज का इकट्ठा पढ़ के सुनाओ। फिर मैंने दोनों दिन का इकट्ठा पढ़ के सुनाया। फिर बाबा ने कहा बच्ची आज रात्रि क्लास में तुम भाषण करना, बाबा आकर सुनेंगे। फिर रात्रि क्लास में मैंने भाषण किया, बाबा ने हिस्ट्री, और मैंने सोचा कि बाबा के आगे तो मम्मा भी मुरली नहीं चलाती है। मम्मा मुरली चलाती है, बाबा आते हैं मन पूरी कर देती है। तो बाबा ने थोड़ा हिस्ट्री हॉल के पैसेज में चक्कर लगाते सुना, थोड़ा अंदर आके भी सुना। तो इस तरह से मीठे बाबा ने लिखना भी सिखाया, बोलना भी सिखाया। बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है ना। कितने वरदानों से सजाया। ये टीचर पढ़ाने की बात सुनाई, अब मैं गुरु की बात भी सुनाती हूँ। एक दिन मैं बाबा के सामने बैठी, बाबा के कमरे में। बाबा ने पूछा बच्ची कभी ध्यान में गई हो? मैंने कहा नहीं। फिर बाबा ने कहा जाओगी? जी बाबा। अच्छा, बाबा भेजते हैं, समझ गए। अब बाबा ने कहा मैं तुमको ध्यान में भेजता हूँ। अब मैं चुस्त होके बैठ गई, बाबा ने मुझे दृष्टि दी। वो बाबा की दृष्टि कितनी देर तक मुझे मिली मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ध्यान में चली गई। बाबा की दृष्टि ऐसी थी कि ध्यान में चली गई। उसके बाद शायद ज्यादा देर ध्यान में रही, आंखें बंद बहुत देर तक रही। फिर बाबा ने आवाज लगाई, आओ बच्ची, आओ बच्ची, नीचे आओ, आओ बच्ची। बाबा की वो आवाज नीचे ले आई। जब मेरी आंखें खुली मैंने क्या देखा, बाबा का हाथ मेरे सिर पर था। बाबा का हाथ सिर पर था और मेरी आंखें खुली और मैं बाबा मुझे दृष्टि देते रहे लेकिन बाबा का हाथ सिर पर रहा। फिर बाबा ने कहा बच्ची ऐसे ही वतन में जाती रहोगी, वरदान दे दिया। ये सतगुरु रूप से लिखना और बोलना सिखाया, टीचर रूप से। ये सतगुरु रूप से। और बाबा ने मीठी पालना तो की ही, बहुत मीठी पालना की। जब मैं 6 वर्ष की थी 2 महीना रही यहाँ, सारा दिन बाबा के पीछे 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 पीछे, सारा दिन बाबा को छोड़ते ही नहीं थे। इतना बाबा साथ आने देते थे, ये नहीं कहते थे जाओ जाओ, बाबा हाथ पकड़ के चलाते थे। ऐसी मीठी पालना बाबा की मिली, इसके लिए कितने बाबा के गुण गाए, कितने गुण गाए। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बात दिल से कही मेरी, बात दिल से कही एक बार।